গোপীজন বল্লভ গিরিবর ধারে, গোপীজন বল্লভ গিরিবর ধারে, যশোদানন্দন ব্রজ জনরঞ্জন, যশোদানন্দন ব্রজ জনরঞ্জন, যমুনা তীর বনচারে, যমুনা তীর বনচারে, জয় রাধা মাধব কুঞ্জ বিহারে, জয় রাধা মাধব কুঞ্জ বিহারে, গোপীজন বল্লভ গিরিবর ধারে, গোপীজন বল্লভ গিরিবর ধারে, যশোদানন্দন ব্রজ জনরঞ্জন, যশোদানন্দন ব্রজ জনরঞ্জন, যশোদানন্দন ব্রজ জনরঞ্জন, যমুনা তীর বনচারে, যমুনা তীর বনচারে, জয় রাধা মাধব কুঞ্জ বিহারে, জয় রাধা মাধব কুঞ্জ বিহারে, গোপীজন বল্লভ গিরিবর ধারে, গোপীজন বল্লভ গিরিবর ধারে, যশোদানন্দন ব্রজ জনরঞ্জন, যশোদানন্দন ব্রজ জনরঞ্জন, যমুনা তীর বনচারে, যমুনা তীর বনচারে, জয় রাধা মাধব কুঞ্জ বিহারে, जय राधा माधव कुंज बिहारे, जय विश्वपाद परमहंस परिव्रजाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद इस डिवाइन ग्रेस अभय चरण अरविंद भक्ति विदान स्वामी जगत गुरु श्री प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। वृंदावन धाम की जय। नवदीपापुर धाम की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा माई की जय। जमुना माई की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी महारानी की जय। समावेत भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे ऑल ग्लोरियस टू असेंबल्ड डिवोटीज ऑल ग्लोरियस टू असेंबल्ड डिवोटीज ऑल ग्लोरियस टू असेंबल्ड डिवोटीज ग्लोरियस टू श्री श्री गुरु एंड श्री गौरांग। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम श्रीमद् भागवतम का 8वां स्कंद अध्याय 7वां और श्लोक संख्या 34 और 35। 34 में कोई तात्पर्य नहीं दिया है। तस्य ते सत असतोह परतः परस्य न अंज स्वरूपगमने प्रभवन्ति भूम्नः ब्रह्म आदयः किम् उत संस्तवने वयम् तु सर्ग विसर्ग विषया शक्तिमात्रम्। तत्तस्य ते सदसतो परतः परस्य नाञ्जः स्वरूपगमने प्रभवन्ति भुम्नः ब्रह्मादय किमुत संस्तवने वयं तु तत्सर्ग सर्ग विषया अपि शक्तिमात्रम्। तत्तस्य ते सदसतो परतः परस्य नाञ्जः स्वरूपगमने प्रभवन्ति भुम्नः ब्रह्मादय किमुतः संस्तवने वयं तु तत्सर्ग सर्ग विषयापि शक्तिमात्रम्। तत्तस्य ते सदसतो परतः परस्य नाञ्जः स्वरूपगमने प्रभवन्ति भुम्नः ब्रह्मादय किमुत संस्तवने वयं तु तत्सर्ग सर्ग विषयापि शक्तिमात्रम्। माता एव तस्य उसका ते आपका सत असतः चर तथा अचर सारे जीवों का परतः दिव्य पद पर स्थित परस्य समझ पाना दुष्कर न न तो अंजह जैसा है स्वरूप गमने आपकी वास्तविकता तक पहुंच पाना प्रभवंती संभव है भुम्न हे महान ब्रह्म आदय ब्रह्मा जी जैसे पुरुष भी किम उत अन्यों के विषय में क्या कहा जाए संस्तवने प्रार्थना करने में वयम तो जहां तक हमारा संबंध है तत् आपका सर्ग सर्ग विषया सृष्टि की सृष्टियां अपि यद्यपि शक्ति मात्रम यथाशक्ति अनुवाद है ब्रह्मा जी तथा अन्य देवतागण जैसे व्यक्ति तक आपकी स्थिति नहीं समझ सकते क्योंकि आप चर तथा अचर सृष्टि से भी परे हैं क्योंकि आपको सही रूप में कोई नहीं समझ सकता तो फिर भला कोई किस तरह आपकी स्तुति कर सकता है यह असंभव है जहां तक हमारा संबंध है हम ब्रह्मा जी की सृष्टि के प्राणी हैं अतएव ऐसी परिस्थिति में हम आपकी ठीक से स्तुति नहीं कर सकते किंतु हमने आपकी शक्ति के अनुसार अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं। 35वां श्लोक एतत् परम प्रपश्यामः न परम ते महाईश्वर वृणनाय हि लोकस्य व्यक्ति ते अव्यक्तकर्मणः एतत् परं प्रपश्यामो न परं ते महेश्वरः वृणनाय हि लोकस्य व्यक्तिस्ते अव्यक्तकर्मणः एतत् परं प्रपश्यामो न परं ते महेश्वर वृण्डनाय हि लोकस्य व्यक्तिस्ते अव्यक्तकर्मणः एतत् परं प्रपश्यामो न परं ते महेश्वर मृण्डनाय हि लोकस्य व्यक्तिस्ते अव्यक्तकर्मणः एक एक बार बोलो माता है। ये सारी वस्तुएं परम दिव्य प्रपश्यामः हम देख सकते हैं, न नहीं परम वास्तविक दिव्य स्थिति ते आपकी महाईश्वर हे महान शासक मृंडनाय सुख के लिए ही निसंदेह लोकस्य सारे जगत के व्यक्ति ही प्रकट ते आपके अव्यक्त कर्मण जिसके कार्यकलाप सबको अज्ञात है। अनुवाद और तात्पर्य श्रीमदेशी भक्ति विदान स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। हे महान शासक, हमारे लिए आपके असली स्वरूप को समझ पाना असंभव है। जहाँ तक हम देख पाते हैं आपकी उपस्थिति हर एक के लिए सुख समृद्धि लाती है, इसके परे कोई भी आपके कार्यकलापों को समझ नहीं सकता। हम इतना ही देख सकते हैं, इससे अधिक कुछ भी नहीं। जब देवता गण शिव जी की इस तरह स्तुति कर रहे थे तो उनका आंतरिक प्रयोजन उन्हें प्रसन्न करना था, जिससे वे हलाहल उत्पन्न उपद्रवकारी स्थिति को ठीक कर लें। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय 20वें श्लोक में कहा गया है, काम स्थिर हत ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता। जब कोई देवताओं की पूजा करता है तो यह निश्चित है कि वह इन देवताओं की कृपा से अपनी आंतरिक इच्छाओं की पूर्ति चाहता है। सामान्यतया लोग किसी न किसी उद्देश्य के लिए देवताओं की पूजा में लिप्त रहते हैं अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुर्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकां वंदेहं श्री गुरुः श्रीजुता पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि श्रीहरि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एतत् परम प्रपश्यामो न वरं ते महेश्वर मृंडना ही लोकस्य व्यक्तिस्ते अव्यक्त कर्मणः। इसका मतलब ये है कि शिव जी के चाहक वर्ग बहुत होंगे, फिर भी शिव जी के कार्यकलापों को समझ नहीं पाने वाला। शिव जी की जो स्थिति बताई है वो विरजा के दोनों पार है, एक पार नहीं। जो वैकुंठ का जो सारा विस्तार है, जहां ब्रह्म ज्योति सर्व प्रकार से उपलब्ध है, होती ही है, भौतिक दुनिया में तो उसका रिफ्लेक्शन होता है, ब्रह्म ज्योति यहां भी प्रवेश करती है, पर बीच में रही बिरजा। तो जो कैलाश है और वहां शिव जी का आवास है जो संकर्षण का रूपांतर है, हाँ? और वहां शिव जी हमेशा अपना मूल स्वरूप महासंकर्षण का जाप करते रहते हैं, हाँ? और जब विरजा नदी पार करके भौतिक दुनिया में आते हैं तो इनका स्थान प्रथम होता है, हाँ? वहां महाकालपुर नाम से बताया जाता है। महाकालपुर सनातन गोस्वामी के बृहद भागवतामृत में सब आता है। तो महाकालपुर ऐसी जगह है जहां शिव जी का जो परावर्तित रूप है वो मौजूद है। जो भौतिक प्रकृति की अधिष्ठात्री दुर्गा देवी के साथ इनका व्यवहार सिद्ध होता है, और भगवान भी अपने अंशों को प्रकृति के गर्भ में देते हैं सारे अंश जीवों को। ताशाम महद्योनिर अहम बीज प्रदपिता, भगवान का सीधा संबंध है। पर लेकिन महाकालपुर में तो शिव जी के द्वारा ही सारे जीवों अहंकार इत्यादि जो तीन गुणों से तीन प्रकार के अहंकार प्राप्त करने वाले जीव होते हैं, इनको प्रकृति के गोद में पैदा करते हैं। तो शिव जी पुरुष तत्व है, पर लेकिन पुरुष तत्व तो ब्रह्मा जी के आदेश से प्रजापति के रूप में इनका स्थान दिया है। प्रजापति यानी कि प्रजा पैदा करने वाला। तो शिव जी को ये जब आदेश मिला था ब्रह्मा जी के द्वारा, तो शिव जी की प्रजा जो भैरव कहलाते हैं सारे, वो काफी खतरनाक थे, और बाकी के सारे जो सप्तर्षि हैं इनकी जो प्रजाएं हैं वो सारी प्रजा शांत स्वभाव की अपने अपने गुणों में, लेकिन वो तो तामसिक प्रजा है तो पटती नहीं, इसे प्रजा का विस्तार होता नहीं, हाँ? तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि ये प्रजा पैदा करना कितनी मुश्किली बात है, वो सारी मुश्किली आज भी अनुभव करते रहते हैं, हाँ? लेकिन वो तो सृष्टि की शुरुआत में ही, हाँ? वो मुश्किलियां इस तरह प्रकट हुई है। शिव जी आंतरिक, इनका आंतरिक जो स्थिति है वो हमेशा बनाने के लिए वो महाशंकर्षण का जाप करते रहते हैं। भगवान के हाथ में माला नहीं होती, भक्तों के हाथ में ही होती है। तो शिव जी के हाथ में, और शिव जी ने पार्वती को पकड़ा दी, गणेश को पकड़ा दी, कार्तिकेय को भी पकड़ा दी, लेकिन शिव जी के चाहने वाले माला नहीं पकड़ते। तो देखो समझ ना समझ का यह चरित्र है। देवतागण जानते हैं लेकिन गहराई से बिल्कुल नहीं। देवताओं को इसीलिए प्रस्तुत किया गया है शिव जी के सामने कि इनको विनती करे कि भाई सारी दुनिया का कल्याण है, शिव याने कल्याण, कल्याण करना है, इसलिए आप ही एकमात्र ऐसा व्यक्तित्व हो कि सारी दुनिया का कल्याण करने के लिए ये जो समुद्र मंथन में जहर पैदा हुआ है ये आप पी जाओ। लेकिन शिव जी को खुश करके बिना कैसे वो पी सकते हैं, क्या कोई भी व्यक्ति जहर पीने के लिए तैयार हो जाएगा? तो ये देवताओं को भेजा, ब्रह्मा स्वयं नहीं आते हैं। ब्रह्मा की पैदाश जो सारे देवता गण हैं वो लोग आते हैं। तो सब में इतनी तो सारी कुशलता या समझ शक्ति भी नहीं होती। ये लोग कबूल करते हैं कि क्या हम जो आपसे प्रार्थना करते हैं वो प्रार्थनाओं में हम कोई शक्ति या इसका संचार से नहीं कर रहे हैं, हम तो सामान्य जीव हैं। मनुष्य योनि चौथे प्रकार की सृष्टि पैदा करने वाली बताई है। तीसरी है देवताओं की। देवताओं यदि सारी सृष्टि में सप्त समुद्र, सप्त द्वीप इत्यादि की परिस्थिति, ये हलाहल विष जो क्षीर समुद्र में पैदा हुआ है, क्षीर समुद्र का मंथन कर रहे हैं ना, तो पहले विष पैदा हो गए और इतना खतरनाक विष कि ये जो समुद्र की सपाटी पर आए, यानी कि ये गर्भोदकशायी समुद्र हैं, इनकी सपाटी पर सारे ग्रह तर रहे हैं। सारे ग्रह विष से ही भरपूर हो जाएंगे, तो वहां प्रजा पैदा करने के ही है, तो बात ही कैसे है। तो शिव जी इतने महान हैं, वो इनकी महानता जानते हुए भी इसका विगतवार कोई समझा नहीं सकता, यानी कि अपने शब्द भी कम पड़ते हैं। एक तो शिव जी का जो स्थान है उसके बारे में काफी लोगों को परेशानी आती है, क्योंकि ये सृष्टि के, सारी सृष्टि के लिए नहीं लेकिन एक ब्रह्मांड के लिए इनको नियामक बनाया है, लेकिन तीन नियामक है, ब्रह्मा विष्णु और महेश। वहां विष्णु की ख्याति भी भक्तों के लिए तो परम है, लेकिन देवताओं इत्यादि जो नासबज है तो विष्णु में भी तीनों में से एक मानते हैं, वो सत्वगुण के संचालक बनते हैं, शिव जी तमोगुण के संचालक बनते हैं और ब्रह्मा जी रजोगुण से, रजोगुण से सृष्टि पैदा होती है, लेकिन नियंत्रण तो शिव जी करेंगे, रख रखाव विष्णु के हाथ में है। तो जब नाश का समय है तब शिव जी जहर पी सकते हैं, या सृष्टि की आदि में ही पहले समुद्र मंथन में विष पैदा हुआ है, तो शिव जी को क्या फर्क पड़ता है पहले पिए या बाद में पिए। वो हमेशा तत्पर रहते हैं। तो ये देवताओं को आगे किया कि जाओ शिव जी के महानता न जानते हुए भी आप इनकी सराहना करो, इसलिए देवता ऐसी भाषा बोलते हैं। नहीं तो देवताओं सारे जगह ब्रह्मा जी की लीडरशिप में शिव जी और होते तो नरसिंह भगवान के सामने भी प्रार्थना करने लगते हैं, यानी कि जो बोलते हैं उनके साथ पीछे पीछे बोलने लगते हैं, अपना तो कुछ अनुभव नहीं बताते हैं। जो पैरट होते हैं ना रिपीट करते हैं, तो देवताओं सारे हाँ 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 करते हैं, रिपीट करते हैं, आप ही महान हो आप ही। तो इनको इसलिए भेजे गए हैं कि शिव जी की महानता और बढ़े। जो ना समझ लोग शिव जी के पास जाते हैं और ऐसा महत्व का काम शिव जी के पास कराने के लिए विनंती करते हैं तो कितना बड़ा सहयोग प्राप्त होता है। तो देवता इसी तरह डिक्लेयर कर देते हैं, अभी तक जो प्रार्थना की आप क्षम्य समझना, क्योंकि नहीं है कि आपकी ये दोनों साइड की जो प्रक्रिया है, एक वैकुंठ में जो कैलाश है और ये महाकाल, दोनों की प्रक्रिया ऐसी है जो अति आवश्यक बताई गई है। बृहद भागवतामृत में तो ये भी लिखा है क्योंकि ये महाकाल विरजा नदी नदी के भौतिक साइड पे है, तो जो ब्रह्म ज्योति आती है तो अतिशय तेजोमय वहां होती है महाकाल। तो महाकाल ऐसा ट्रैप बनाया है, जो जो निर्गुण तत्ववादी होते हैं, निराकारवादी होते हैं, इन लोगों को यही समझ में आता है कि यही ब्रह्म ज्योति आ गई, लेकिन ये तो महाकाल है। महाकाल में शिव जी चौकीदार हैं, अयोग्य व्यक्ति को तो वापस भेजते हैं। ये नेर अरविंदाक्ष विमुक्त मानिना तैयस्त भावा अविशुद्ध बुद्ध आरुह्य कृच्छेन परम पदम तथा पतंती, गिरते क्यों है? शिव जी गिराते हैं, वो कैलाश भी नहीं जा सकते, महाकाल पे ही आप ब्रह्म ज्योति में एक कोने में अपने आप को मुक्त मानी न मानी न, वास्तविकता नहीं है, वो पहुंचे नहीं और पहुंच भी नहीं पाते। तो महाकाल जो प्रदेश है सृष्टि का अंतिम प्रदेश है, तो वहां शिव जी की स्थिति क्या होती है? जब गोप कुमार महाकालपुर में पहुंच गया तो वो महाकाल की परिस्थिति देखकर ये वेद समझ चुका है कि ये असली शिव जी का स्थान नहीं है, लेकिन वैकुंठ प्रदेश में होता है, तो इनकी भावना महाकाल को ही अंतिम लक्ष्य नहीं माननी है गोप कुमार की। इसीलिए भगवान ने वैकुंठवासियों को भेजा। शिव जी समझ गए कि तो वैकुंठवासी, मैं भी तैयार हो जाऊं, चलो मैं आप लोगों के साथ आता हूं, लेकिन नहीं आते। वैकुंठवासी जो महाकाल में आ सकते हैं, गोप कुमार को समझाया कि भैया ऐसे कर रहे, जा वृंदावन वापस जा, वहां तेरे गुरु भी होंगे और भगवत प्राप्ति का सीधा रास्ता भी दिखा देंगे, तो दोबारा महाकाल में नहीं है, बाईपास कर देना और सीधा तू भगवान की और गुरु की कृपा से, तो ये भौतिक जो स्तर हैं अलग अलग प्रकार के, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश और ये महाकाल का, या आठ आठ लेयर के बाद अंतिम स्तर है। तो शिव जी की महत्ता सिर्फ हम भौतिक स्तर पे जितना जानते हैं उतनी ही नहीं है, महाकाल के परे, विरजा के परे कैलाश है, कैलाश की स्थिति आध्यात्मिक बताई है। वहां भी शिव और शिव के परिवार आते हैं, क्योंकि शिव जी की कृपा से सारे परिवार के हाथ में माला है, तो भगवान का जो वर्चस्व है सारी दुनिया पर प्रकट और अप्रकट दोनों में, तो वो शिव जी के माध्यम से ये बीच वाला माध्यम है वो अवश्य समझने के अपने आवश्यकता होती है। देवता कहते कि हमारे में पूरी समझ नहीं है, फिर भी उद्देश्य हमारा ये है कि आप कृपा करें और हलाहल पिए तो सारी दुनियाओं का रक्षण हो पाएगा। और शिव जी को जो अपनी कमजोरी बताने वाले हैं कि हम आपको समझते नहीं, फिर भी हम आपके पास दुनिया का कल्याण कराने के लिए आ रहे हैं, तो शिव जी आसानी से संतोष मानते थे। इन श्लोकों के पीछे जब शिव जी बोलना शुरू कर देते हैं, पार्वती को समझाते हैं, उनके पास पार्वती के अलावा यानी कि सारी सृष्टि, पार्वती को समझाएं तो सारी सृष्टि को समझा देंगे कि देखो ये देवता मेरे पास कैसे आए, कितनी महानता इन लोगों की है कि सारे जगत का कल्याण कराने के लिए मुझे चुना है। हमें हम ये जो जहर है उससे डरते नहीं, हाँ। तो ये शिव जी के कार्यकलाप जो भक्तिमय होते हैं वो शिव उपासक समझ नहीं पाते। जब देवताओं में गड़बड़ी होती है समझने की मुश्किल, और लेकिन वो तो निखालस है, बोल देंगे कि भई हम समझे नहीं बराबर, और जानते भी नहीं, क्योंकि ब्रह्मा जी भी नहीं बता सकते। आपको वो कहानी पता होगा, सृष्टि की शुरुआत में ब्रह्मा जी को भी 5 माथे थे, हाँ, और शिव जी को भी 5 माथा, लेकिन शिव जी ने कहा मैं तो भगवान का सीधा रूपांतर हूं और ये ब्रह्मा तो जीव है, प्रथम जीव है, उसको 5 माथा कैसे दे दिए, अन्याय है। शिव जी ने त्रिशूल छोड़कर 1 माथा काट लिया ब्रह्मा जी का। तो ब्रह्मा ने कहा अन्याय हो गया मेरे, तो न्याय अन्याय ये भौतिक दुनिया में है, वहां से शुरू हुआ है, तो भगवान कैसे उसका निराकरण करते हैं। दोनों भगवान के पास पहुंच गए, भगवान ने कहा बात तो सही है कि शिव जी मेरा रूपांतर है, ब्रह्मा तो मेरा अंश है, जीव है, इसलिए इनका ये एक सिर काट लेना इनकी बराबरी तो नहीं कर सकता है, फिर भी रजोगुण का तो नियंता रहेगा, लेकिन रजोगुण इतना फंसाने वाला है, पर उसकी चिंता मत कर, ये तमोगुण भी बहुत फंसाने वाला है, तो शिव जी को भी परेशानी आएगी, तुम्हें भी परेशानी आएगी, लेकिन मेरी आज्ञा है कि तुम दोनों मेरे दाहिना और बाइना हाथ बराबर हैं, जाओ सृष्टि के सृजन में आप दोनों की महत्ता बता दें। तो क्योंकि भगवान का तो एक ही कर्तव्य है मेंटेन करना, तो ये दोनों झगड़ने लगे, अन्याय है, तो भगवान ने कहा उपाय है भाई, जब जब झगड़ा होता है दो व्यक्तियों में, दो भक्तों में, तो क्या करना चाहिए, झगड़े का फल तो बेकार ही होगा जानते हैं, पर फिर भी जो झगड़े की जो शक्ति है इनको 50-50 डिवाइड कर दो, शिव जी 50% तू ये शक्ति ले ले, झगड़े की शक्ति है, और दूसरा ब्रह्मा जी तू 50%, बट दोनों में मित्रता बनाने के लिए ये दोनों शक्ति तुम्हारे जो योग्य देवताओं को दे दो, यानी कि आप वो झगड़े से मुक्त हो जाओगे, लेकिन वो मैं संभाल लूंगा, जब मैं आता हूं 1 मिलेनियम में, तो 1 युग में 1 को मैं तरफदारी करूंगा, दूसरे को अन्याय करूंगा, और दूसरे मिलेनियम में जिसको अन्याय हुआ है इनको न्याय दूंगा और दूसरे को अन्याय पर, 1 को ही तो हम सराहना कर सकते हैं। तो इस कलयुग शुरू हुए उससे पहले द्वापर अंत अर्जुन इंद्र का बेटा बना था हाँ? और सूर्य का कर्ण, तो सूर्य को जो शक्ति दी है वो शिव जी की शक्ति है कर्ण को डिसफेवर किया, अर्जुन को फेवर किया। ये भगवान का साम्राज्य कोई समझ नहीं पाता। तो शिव जी और ब्रह्मा जी जब तक भौतिक दुनिया में हैं, तो ऐसी समझ में इन दोनों के बीच में भी हरकत होती रहती है। सृष्टि का क्रम है कि बच्चे पैदा करने में भी तकलीफ होती है, वो कोई आसान बात नहीं है। कोई एक्सीडेंटल बच्चे पैदा नहीं होते हैं, भगवान की तरकीब है, योजनाएं हैं। जो अधिकारी नहीं है और अपने अधिकार बिना आदर्शता के लिए प्रजापिता करना, वो तो भगवान के लिए ही होता है। भगवान के लिए प्रजापति बनने के लिए मनुष्य को मनु और शत्रुपा की संतान, इनको ये चौथा सृष्टि का क्रम यानी कि क्रिएटर, मनुष्य चौथे नंबर का क्रिएटर है। क्रिएशन में क्रिएशन में क्रिएशन में क्रिएशन, यानी कि ये सब उधार शक्ति भगवान से उसको मिलती है। नहीं तो आजकल ये उसके जमाने में, साइंस के जमाने में क्लोनिंग करके भी बच्चे पैदा करते हैं, यानी कि माँ के अंडर में पुरुष का या किसी भी कैसे का वीर्य की आवश्यकता नहीं है। इसको मैन्युपुलेट करके एक में से दो इसमें से शरीर बना सकते हैं, लेकिन ये बच्चा जो हुआ वो मेड का भी बच्चा हुआ था ना, उसे क्या कहते थे, पहले पहला क्लोन हाँ नहीं नहीं घेटा होता है ना, घेटे को क्या कहते, मेड ही तो कहते, शिप हाँ? तो उसका क्लोन बनाया डोली, इसका साइंस ने नाम दिया डोली। उसको माँ के अंडर से ही विभाजित करके इनका शरीर बना दिया। तो वो लोग समझ रहे हैं कि हाँ अभी कोई पुरुष की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वो डोली का भविष्य क्या है, दूसरी डोली नहीं बना सकती, उसमें शक्ति नहीं होती क्लोनिंग। तो ये तो प्रजापति बनने का सारा हेतु भगवान के आदेश पर है। और ब्रह्मा जी जानते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी सर्जक है, रजोगुण के स्वामी हैं, तो सृजनात्मक शक्ति रजोगुण से आती है, तमोगुण से नाश होता है, सत्वगुण में पालन रहता है। तो जो भी है, देवताओं अपनी मर्यादा जानते हैं, शिव जी की मर्यादा नहीं जानते हैं, वो कबूल कर देते हैं। शिव जी के उपासक भी शिव जी को नहीं जानते, लेकिन शिव जी कोई बच्चा अपने पिता से तोतली भाषा में बोलता है तो पिता समझ लेता है, इसी तरह शिव जी भी समझ लेते हैं कि हाँ अवश्य लोक कल्याण का काम है तो अवश्य हम करेंगे। तो ये प्रार्थना का हेतु है, देवताओं जो कार्य शिव जी के पास करा सकते थे, तो चाहे वो जाने न जाने कमजोरी भी क्यों ना हो, लेकिन शिव जी समझ लेते हैं, इनको समझाने के लिए बड़ी बड़ी ऊंची भाषा की आवश्यकता नहीं है, इसलिए आशुतोष कहलाते हैं, आसानी से संतोष हो जा। कोई बोले उसे पहले जा, जान लेते हैं, ले जा, निकल यहां से, हाँ, क्योंकि प्रकृति साथ में जाती है, प्रकृति का विस्तार जाता है और प्रकृति आशीर्वाद को भी भस्म कर सकती है। इसलिए ज्यादातर लोगों जो शिव जी के पास अपेक्षा रखते हैं तो वो ज्यादा समय रहता भी नहीं, हाँ। लेकिन शिव जी की ये महानता जब सती के पति बनने के लिए आए तो वो भौतिक प्रकृति में अपना स्थान, अपनी जो स्थिति है, खुद की स्थिति है, वो बनाए रखने में माला है, महाशंकर्षण का जाप करते हैं और सिखाते हैं, पार्वती को भी सिखाते हैं, गणेश को भी सिखाते हैं, सुब्रमण्यम को भी सिखाते हैं। तो ये सृष्टि की आदि की बात है, क्योंकि हमेशा अपने आध्यात्मिक अवस्था जो है वो किन से प्राप्त हुई है वो समझाने के लिए शिव जी वैष्णवानाम यथासंभवम, वैष्णव पद्धति में तो शिव जी का महत्व इतना बड़ा दे दिया है। तो यहाँ बताते हैं कि कामैस्तैस्तैर हतक ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियम आस्थाया माया ते विहिता स्वया। सभी को वही जिनकी जैसी आस्था है उसमें स्थिर कर देता हूँ और मेरे द्वारा ही अंतिम में तो भगवान ही देता है, तो भगवान ऐसे माध्यम बनाकर शिव जी को शक्ति प्रदान करते हैं। तो अवश्य हमें ये जानने की आवश्यकता होती है कि ये सृष्टि की शुरुआत में है, सृष्टि की शुरुआत में कितनी जटिलता पैदा होती है, हाँ। राक्षस है एक साइड में, इनकी तो हिम्मत होती ही नहीं कि शिव जी के पास जाए, हाँ। जहर निकला है, राक्षस कहां जाए, वो तो डर के भागे, चुप हो गए। और जगत के कल्याण के लिए और सारी व्यवस्था बनाने के लिए तो देवताओं को सौंपा गया है, संचालक है, हाँ। कहते हैं ना कि कितने 33 कोटि देवता है, तो कोटि यानी करोड़, तैतीस प्रकार, कोटि यानी उसकी कैटेगरी, 33 कैटेगरी के हैं, इसमें तो 8 वसु तो आ ही जाते हैं, 12 रुद्र आ जाते हैं, हाँ 20 हो गए, 13 कौन है और, सूर्य चंद्र, हाँ 2 कम और हो गए, 10 और बाकी है, प्रजापति, ये सारे देवता हैं, हाँ वो 33 कोटि के प्रकार के देवता हैं जो सारी सृष्टि का संचालन करने के लिए वो भी अपनी अपनी विस्तार करते हैं, हाँ। तो तीनों प्रकार की सृष्टि में स्थिति, प्रलय, सृष्टि स्थिति और प्रलय तीनों सम्मिलित है। तो ज्यादातर लोग अपनी काम वासनाओं को पूर्ति करने के लिए देवताओं की शरण में जाते हैं, प्रपद्यन्ते अन्य देवता, तो इन लोगों को भी इंटरेक्शन है देवताओं को, पर लेकिन ये जहर के साथ इंटरेक्शन कौन करेगा, हाँ किसी की हिम्मत नहीं। झेर देखते ही राक्षस लोग की बत्ती डूल हो गई थी, देवताओं जानते हैं कि झेर सर्वनाश कर सकता है, पर ये तामसिक भाव इतना पैदा हुआ जो सर्वनाशक भाव। तो शिवजी तामस का कंट्रोलर है, वो स्वयं तामसिक नहीं है, स्वयं भगवान की उपासना कर रहे हैं और जो जो इनको परेशान करने आते हैं तामसिक भाव से, इसलिए वो स्मशान में घुस जाते हैं कि वहां कोई आए ही नहीं। इनके पास रहने के घर नहीं है, हर रोज एक पेड़ के नीचे पार्वती को भी गणेश और नंदी सब जाते हैं और शिव जी के कंट्रोल में है सभी। कभी सुना है कि शिव जी के यहां झगड़ा हुआ इनके परिवार में? कोई झगड़ा नहीं, इसका कारण है नहीं तो एक दूसरे के विरोध स्वभाव वाले प्रतिनिधि हैं। शिव जी के पास नंदी है तो पार्वती के पास शेर है, शेर और नंदी के आपस में बनती नहीं। गणेश के पास चूहा है तो शिव जी का नाग भी है। मोर सामने तो कार्तिकेय का मोर सांप को भी खा सकता है, तो ये सारा स्वभाव एक दूसरे से विरोध है, एक दूसरे के दुश्मन के। फिर भी हमने नहीं देखा है, नहीं सुना है कि शिव जी के घर में झगड़ा हुआ। तो गृहस्थ को तो ये देखना चाहिए, पक्षापक्षी नहीं करें। यदि शिव जी की उपासना करें तो वैष्णवानाम यथासंभव, वैष्णव चरित्र है, माला करने से वैष्णव चरित्र प्राप्त होता है। जो भगवान का नाम का जप नहीं करता, अन्य जप करता है तो कोई फायदा नहीं, कोई गारंटी है ही नहीं। कलयुग में तो इसकी ही गारंटी दी गई है, यह इदम परम मद भक्ते शब्द धास्यति भक्ति मई पराम कृत्वा जाति नात्र संशय। भगवान सीधा कह देते, ये जो रहस्य है गीता में वो भगवान का रहस्य है, और शिव जी का रहस्य इसी तरह भगवान के रहस्य पर आधारित है। भगवान को कोई कार्यवाही करनी नहीं आती और चाहिए भी नहीं, न तो करते हैं, स्वयं अपनी शक्तियां काम कर लेती है। पराशर शक्ति विविधि सुरुयते स्वाभाविक ही ज्ञान बल क्रिया च, इसलिए वो भगवान है। बाकी शिव जी की प्रतिक्रियाएं आती होगी तो स्वयं उनको इंडल्ज होना पड़ता है, अंदर उतरना पड़ता है, प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ता है। भगवान के साथ भी झगड़ने के लिए वो तैयार हो जाते हैं, वो बाणासुर के तो ये स्वभाव विचित्र नहीं है, विशिष्ट स्वभाव है। भगवान की महत्ता बढ़ाने के लिए शिव जी भी ऐसा काम करते हैं और साथ में गणेश को भी ले जाते हैं, एक शांति जगत में स्थापित करने के लिए है। फिर भी लड़ाई करने क्यों जाता है? शिव जी खींच लेते हैं, चल लड़ो भगवान कृष्ण के साथ, उषा और अनिरुद्ध के साथ जो बाणासुर ने चुनौती दी थी। तो बलराम आए, कृष्ण भगवान आए, बाणासुर के सारे हजार हाथ में दो बाकी रखे, बाकी के काट लिए, तो उसका अहंकार का चुरा हो गया। तो शिव जी को बोला है मदद करो, आप तो मेरे सेवक हो, मैंने आपके तांडव नृत्य में ढोलक बजाया था, चलो हिसाब लाओ। मानता है, ये तो कैसा है, एक सेवक भगवान से कहता है कि मेरा हिसाब अभी चुकते करो, आप उधारी करते थे। तो ये सारी जो बातें हैं, तो शिव जी की महत्ता किस तरह वैष्णव के लिए उदाहरण बननी चाहिए। महाजन है, कोई फालतू थोड़े है। शुरू शुरू में अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ में शिव जी के लिए बहुत कटु वचन भी कोई कहता था, प्रभुपाद जी ने हड़का दिया बराबर। बंबई में एक बार गए थे, वो मॉर्निंग वॉक में जाते थे सुबह सुबह, और वापस लौटते समय एक दुर्गा माता का मंदिर आता था, प्रभुपाद जी अंदर गए और दाहिनी ओर से दंडवत किए और आ गए। तो भक्त लोग भी अनुकरण तो करते ही थे, उन्होंने भी ऐसा ही किया। पर लेकिन एक भक्त ने पूछा कि प्रभुपाद जी, हम तो अपने मंदिर में बाएं हाथ से दंडवत करते हैं, आप यहाँ दाएं हाथ से क्यों करा? प्रभुपाद कहते हैं क्योंकि ये अपने मंदिर में तो परंपरा है जो बाएं हाथ से शुरू होती है, यहाँ तो है ही नहीं परंपरा। देवताओं की कोई परंपरा है क्या? भगवान के लिए परंपरा चाहिए, देवताओं के लिए परंपरा क्या? कोई आवश्यकता नहीं। तो कहने का मतलब है शिव जी का ये जो चरित्र है दो मुहिया नहीं है, इनके हृदय में भगवान स्थापित हैं, क्योंकि वो स्वयं भगवान के रूपांतर है। रूपांतर दही दूध का रूपांतर है, दही में से दूध वापस नहीं आता, लेकिन वो जो व्यवस्था के लिए शिव जी रूपांतर बने हैं, तो उसके लिए सारी शक्ति का स्रोत तो इनका मूल रूप ही है, संकर्षण ही है। तो इसी तरह हम शंकरषण भगवान का ये स्वरूप शिव जी की सराहना करते हैं। किसी को कोई प्रश्न है? बस पकड़ा दिया। कोई प्रश्न नहीं है? और जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की